समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक, भुने हुए मकई के दाने, मूंगफली और ढोल। कल रात से ये सब कुछ चल रहा है और अगले कई दिन तक चलता रहेगा। अब देखो ना, कल रात लोहड़ी के ढोल की धमक कानों से गई नहीं और आज फसलों का त्योहार मकर संक्रांति देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व हेमंत ऋतु की समाप्ति और शिशिर ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इसी दिन से दिन की अवधि बढ़ने लग जाती है। इस त्योहार को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति। और मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं जब इतने सारे राज्यों के इतने सारे नामों के बारे में बता रही हूं तो मेरी साथी शगुन के चेहरे पर भी कुछ भाव उभर रहे हैं कि मुझे भी कुछ बोलने दो, क्योंकि मुझे भी मालूम है कहां कहां क्या क्या मनाया जाता है।
डेफिनेटली नहीं, लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एंड दिस फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट व्हिच एज यू राइटली टोल्ड एंड्स द दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ विंटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट त्रिपुरा। त्रिपुरा, द मकर संक्रांति फेस्टिविटीज दे बिगैन टुडे विद ट्रेडिशनल फर्वर एंड गेयटी एंड ऑफ कोर्स पीपल ऑल अक्रॉस द स्टेट, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, दे आर सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति विद अ होली डिप इन रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, ऑल्सो सूर्य प्रणाम, एंड देयर आफ्टर दे विल सेवर फीस्ट विद न्यूली प्रोड्यूस्ड राइस ग्रेन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केरला।
Oh
yes, thousands of Ayyappa devotees will witness the Makar Vilakku at Sabarimala Hill Shrine today. And on this day, an annual festival that falls on this particular day, it is believed that Lord Ayyappa asserts himself as a holy light to bless his devotees.
तो इतनी सारी बातें हो गई, क्यों ना शगुन इसी फेस्टिव मूड के साथ बाकायदा शुरुआत करें हम भी FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे की। आपका तो सबको पता चल गया है कि आप हैं शगुन चोपड़ा
जी।
आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर और हम दोनों अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं
जी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम व्हिच इज आज सवेरे। एज नईम टोल्ड यू, वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच इज कमिंग टू यू इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद all the latest updates, also metro city updates, and we'll be exploring today's history, that is 14th of January as well, along with the celebrities of course, the celebrations for of course, right? So we'll begin with the headlines first.
जी, अब जिस तरह से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की है उसी से जुड़ी हुई हमारी खबरें भी रहेंगी।
Definitely.
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रथम अमृत स्नान शुरू हो गया है। ढोल नगाड़ों और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ विभिन्न अखाड़ों के संत और महंत और श्रद्धालु इस दिव्य और भव्य कुंभ में पहुंच रहे हैं। कल पौष पूर्णिमा के अवसर पर 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के दिन आज श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों ने त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान किया। हेलीकॉप्टरों से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। ये भव्य आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। 144 वर्षों में केवल एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संयोग ने इस वर्ष महाकुंभ को और विशेष बना दिया है। और आइए चलते हैं अब प्रयागराज अपने संवाददाता आनंद के पास। हेलो आनंद।
जी जी
आनंद, जैसा कि हमें पता है कि प्रयागराज में आज विशेष स्नान चल रहा है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है?
जी आज का यह पावन अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमृत स्नान सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बड़ी संख्या में सन्यासी साधु श्रद्धालु और तीर्थयात्री संगम तट पर पवित्र अमृत स्नान में भाग ले रहे हैं। विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की देखी जा रही है, सभी काफी उत्साहित है और संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आतुर है।
जी।
तो एक चीज आज के दिन का जो सबसे मुख्य आकर्षण रहता है वो अखाड़ों द्वारा किया जाने वाला स्नान रहता है। तो आज सबसे पहले 13 अखाड़ों में से महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा ने पहला अमृत स्नान किया।
अच्छा।
इसके बाद बाकी क्रम संख्या के अनुसार सभी अखाड़ों के स्नान के समय निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन सबसे अंत में जो अखाड़ों का स्नान होगा उनमें निर्मल अखाड़ा शामिल है। तो इनका स्नान शाम के समय संपन्न होता है। तो आज के दिन का सबसे मुख्य आकर्षण होता है अखाड़ों द्वारा किया जाने वाला स्नान। साथ ही इनके इनके स्वागत में काफी श्रद्धालु भी सड़कों पे देखे जा रहे हैं, जो जय घोष का नारा लगा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, और इनके सभी श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो संगम तट में घाटों पे बने घाटों पर संगम में अमृत स्नान कर सके इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि कोई वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या ना हो उनके लिए। तो डेजिनेटेड जगहों पे आपको साइनेज भी बनाए गए हैं, चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, और सभी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बहुत बढ़िया। ये मेरा वैसे अगला सवाल यही था, लेकिन आपने पहले ही सारी जानकारी दे दी। बहुत धन्यवाद आनंद।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
Odisha has become the 34th state and union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Under the scheme, health cover of 5 lakh rupees per year is provided for secondary and tertiary care hospitalization of every family. National Health Authority and Department of Health and Family Welfare, Government of Odisha, signed a memorandum of understanding in New Delhi yesterday in this regard. Speaking on the occasion, Union Health Minister J.P. Nadda said that over 8 crore hospitalization has been recorded under the Ayushman Bharat scheme. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the people of Odisha over the implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. In a social media post, Mr. Modi said that the scheme will ensure the highest quality health care at affordable rates. He noted that the scheme will particularly benefit the Nari Shakti and the elderly of Odisha.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इसका लक्ष्य देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाना है।
National Testing Agency NTA has postponed the UGC NET December 2024 exam, which was scheduled for tomorrow. In a statement, the NTA said it has received representations to postpone the UGC NET examination on account of Pongal, Makar Sankranti and other festivals on 15th January. The new date of exam will be announced later. NTA further said that the examination scheduled on 16 January will be conducted as per earlier schedule.
खो खो विश्व कप 2025 में भारत ने नई दिल्ली में कल रात ए में नेपाल को 37 के मुकाबले 42 अंकों से रोमांचक जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
टॉस जीतकर प्रतीक वाइकर की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष टीम ने शुरुआत में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 24 अंक बनाए। हालांकि नेपाल ने धीरे धीरे खेल में अपनी पकड़ मजबूत की। तीसरी पारी में भारत ने आक्रमण करते हुए 18 अंक बनाए, लेकिन अंतिम पारी में नेपाल बेहतर खेल से लगभग पासा पलटने वाला था। भारत के लिए सुब्रमणि वी ने निर्णायक क्षण में 40 से अधिक सेकंड तक मैदान पर डटकर मेजबान टीम की जीत सुनिश्चित की। भारतीय टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इतने बड़े टूर्नामेंट में अपनी टीम का नेतृत्व करना गर्व की बात है। मैच से पहले एक भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल के साथ औपचारिक मशाल जलाकर टूर्नामेंट का आगाज किया। खो खो विश्व कप में 20 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। भारतीय खो खो महासंघ ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए 15 सदस्यीय टीमों का चयन किया है। प्रतीक वायकर के पास पुरुष टीम का नेतृत्व है जबकि प्रियंका इंगले महिला टीम की कप्तान है। भारतीय पुरुष टीम नेपाल भूटान पेरू और ब्राजील के साथ ग्रुप ए में है। महिला वर्ग में भारतीय टीम को मलेशिया ईरान और कोरिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। टूर्नामेंट में 16 जनवरी तक ग्रुप स्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। 17 को क्वार्टर फाइनल और 18 को सेमीफाइनल खेला जाएगा जबकि फाइनल मुकाबला 19 जनवरी को होगा। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
Moving on to Hockey India League, Tamil Nadu Dragons reclaimed the top spot with 3-2 win over Delhi SG Pipers in the men's section, while Surma Hockey Club defeated Shachirar Bengal Tigers 4-1 in the women's section. We have more from our correspondent.
In what turned out to be a scintillating battle between the table toppers Tamil Nadu Dragons and bottom place Delhi SG Pipers in the Men's Hockey India League in Rourkela yesterday, the team from the south prevailed 3-2. Delhi, noted for their balanced team before the competition commenced, took the lead through a penalty corner converted as early as the second minute by Thomas Domain. But their frail defence again paid the price as the Dragons hit back with a drag flick of their own, converted by in-form Yip Janssen, gold medalist at the Paris Games, who notched up his 5th goal of the campaign. The Dragons were on a roll and added 2 quick field goals. Player of the match David Hart was at his imperious best in goal as Tamil Nadu held on for another win. Meanwhile in Ranchi, Surma Hockey Club rode a late surge to come from behind in dramatic fashion and demolish Rar Bengal Tigers 4-1 in the second match of the women's edition. Today in the women's league, the Rar Bengal Tigers will face Delhi SG Pipers, both teams having lost their openers, while in the men's section, Go Nasika will take on the Surma Hockey Club. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani.
और अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी मुख्य खबरें, और उनमें सबसे पहले शगुन के चेहरे पे फिर से मुझे एक उत्साह दिखाई दे रहा है, क्या बात है।
जी बिल्कुल, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लाइंग काइट्स।
मतलब आज पूरी तरह से हम फेस्टिव मूड में ही रहने वाले हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, द सेलिब्रेशंस विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड इवन आफ्टर दैट।
बताइए कौन से महानगर की खबर है ये।
जी, वी विल टॉक अबाउट हैदराबाद फर्स्ट, एंड ऑन दिस डे, that is, we are talking about Makar Sankranti as well. Mm-hmm. So people fly multicolored kites and practice. Also, they practice charitable deeds and also bathe in holy rivers. So let's talk about the International Kite and Sweet Festival. Well, Telangana Tourism Minister J. Krishna Rao and Transport Minister P. Prabhakar formally inaugurated a 3-day International Kite and Sweet Festival at Parade Grounds last evening as part of the Sankranti celebrations. The Telangana State Tourism and Culture Department has organized the festival, which showcases a vibrant mix of entertainment, cultural heritage and culinary delights. A total of 57 international kite flyers from 19 countries and 58 national kite flyers from 22 Indian states are participating in this particular event.
और अब हम जरा दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एल इज़वाज़ ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। दिव्यांगों और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए पिंक एंड ड्रॉप सुविधा भी विशेष रूप से उपलब्ध रहेगी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान 5 फरवरी को और मतगणना अगले महीने की 8 फरवरी को होगी। और एक छोटी सी खबर और है, दिल्ली से ही जुड़ी हुई लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6-9 में नॉन प्लान दाखिलों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। निदेशालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार एमसीडी स्कूलों से 5वीं पास और सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों से 8वीं पास छात्रों को कक्षा 6 और 9 में दाखिला मिलेगा। निदेशालय ने बताया कि दाखिला संबंधी सभी जानकारी के लिए अभिभावक निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।
Now Naeem, let's focus on Chennai.
जी.
School of Design Thinking has signed a memorandum of understanding with Tamil Nadu government entity ICT Academy of Tamil Nadu to embed design thinking into the ecosystem of academic institutions. It will implement various courses and interventions focused on design thinking and its applications. In addition, they will organize workshops, forums, seminars and other related activities aimed at promoting design thinking as a crucial mindset for fostering innovation. The partnership aims at establishing frameworks for cooperative institutional relations to encourage and promote collaboration in the area of design thinking application in different areas or domains.
और मुंबई से एक खबर मेरे पास ये है कि निगम आयुक्त भूषण घगरानी ने कर निर्धारण व संग्रहण विभाग को झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में व्यावसायिक संपत्तियों के पहचान कर उन्हें कर के दायरे में लाने का निर्देश दिया है। श्री गगरानी ने भायखला स्थित अण्णा भाऊ साठे सभागृह में कर निर्धारण व संग्रहण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ चर्चा की। आयुक्त गगरानी ने कर निर्धारण व संग्रहण विभाग को झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में व्यावसायिक संपत्तियों के पहचान कर उन्हें कर प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया है। आयुक्त की मंशा मुंबई चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को लागू करना है।
नाउ लेट्स फोकस ऑन द अपडेट्स फ्रॉम बेंगलुरु। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड जल शक्ति वी सोमन्ना विल इनॉग्रेट रोड ओवर ब्रिज एट कोप्पल इन नॉर्थ कर्नाटका टुडे। The bridge constructed at a cost of 44.28 crore rupees will ensure seamless transportation for the residents of Kushtagi in Koppal. Thereafter, the minister will inspect the ongoing redevelopment works at Koppal railway station taken up under the Amrit Bharat Station redevelopment scheme. After the civic works are over, the station will have world-class amenities giving superior experience to the rail users.
और अब मेरे पास कोलकाता से जो खबर है वो आपकी उस पहली खबर से कुछ कुछ मिलती है जिसमें आपने महानगरों की खबरों की बात करती है, यानी कि हैदराबाद की खबर।
राइट, कंटिन्यू।
जी, कोलकाता से हमारे पास खबर ये है कि गंगा नगर मेले में मगर संक्रांति का पुण्य स्नान आज मंगलवार सुबह 6:58 से शुरू हुआ, जो 15 जनवरी सुबह 6:58 तक चलेगा। स्नान के लिए मेला परिसर में लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। और महानगरों के अब खबरों के बाद उनके मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में आज सुबह हल्के कोहरे की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Now talking about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 27 degrees Celsius.
और अब हम आ गए हैं इतिहास के उस चरण की तरफ जहां हम 14 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि 14 जनवरी को क्या क्या खास हुआ इतिहास में।
Naeem, let's take our listeners way back in time. In the year 1761, the third and last battle of Panipat was fought between Marathas and the Afghan invader Ahmad Shah Abdali.
1767 में किंग ताकसिन थाईलैंड के राजा बने और उन्होंने थोनबुरी को अपनी राजधानी बनाया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1926 में इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की। 1928 में कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई।
इन द ईयर 1938 बेलूर मठ न्यू टेम्पल वॉज कॉन्सेक्रेटेड इन कलकत्ता।
1942 में रॉबर्ट सुलिवन पहले पायलट बने जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर 100 बार उड़ान भरी।
इन द ईयर 1969 मद्रास स्टेट वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु। इन द ईयर 1982 फर्स्ट एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन विद अ ग्रुप ऑफ 21 इंडियन साइंटिस्ट टीम्स वॉज लेड बाय एस जी काजिम रीच्ड एंटार्क्टिका सक्सेसफुली। In the year 1994 now, Marathwada University was renamed as Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University.
1995 में पोलैंड के अन्वेषक मार्के कार्मिस्की एक ही साल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति बने।
And in the year 1998, Professor Amartya Kumar Sen, economist, was sworn in new master of the Trinity College. He is the first Asian to head a Cambridge college. And in the same year, Bharat Ratna, India's highest award, was given to M.S. Subbulakshmi. And in the year 1999, at least 51 persons were killed and several were injured in a stampede at Hilltop at Pampa on the foothills of Sabarimala in Kerala.
2000 में भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। और 2003 को आज ही के दिन इसराइल ने कजाकिस्तान के बैंकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से दूसरा वाणिज्य उपग्रह छोड़ा था। और बात कर लेते हैं अब अपने उस सेगमेंट की जो हमारे इस कार्यक्रम का आखिरी चरण है।
जी, the last final one.
जी, अगर मैं कहूँ कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, तो हर सुनने वाला एकदम पहचानेगा मुनव्वर राणा।
जी बिल्कुल,
मुनव्वर राणा की आज पुण्यतिथि है और उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके लिखाई के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनकी शायरी के बारे में क्या जिक्र किया जाए। 2014 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने उर्दू और अवधी में लिखा और फारसी और अरबी शब्दावली से परहेज किया, जो उर्दू को हिंदी से अलग करती है, और यही उनकी कविता को, उनकी शायरी को, उनके सुनने वालों तक, उनके पाठकों तक पहुंचाता है और उनके दिल में जगह बनाता है। मुनव्वर राणा की जो शायरी की सबसे खास बात थी वो थी माँ के बारे में अपनी भावनाओं को शब्दों में और अशार में ढालना।
Well, now let's talk about Edmund Halley. Well, everyone has heard of Halley's Comet, and it is without a doubt the most famous comet in the world, although some people might not know why. Well, let me tell you why. It is named after the astronomer and mathematician that I talked about, Edmund Halley, and today it's his death anniversary. He calculated this comet's trajectory and successfully predicted its return, proving that such celestial objects have elliptical orbits. He is also noted for his role in the publication of Newton's Philosophy Naturalis Principia Mathematica.
और आज जयंती है महाश्वेता देवी की, बहुत बड़ा नाम है, कौन उनका नाम नहीं जानता, भारत की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका। उन्होंने बांग्ला भाषा में बेहद संवेदनशील और वैचारिक लेखन के माध्यम से उपन्यास और कहानियों की से साहित्य को समृद्धशाली बनाया। अपने लेखन कार्य के साथ साथ महाश्वेता देवी ने समाज सेवा में भी हमेशा सक्रियता से भाग लिया और इसमें पूरे दिल से लगी रही। स्त्री अधिकारों, दलितों और आदिवासियों के हितों के लिए उन्होंने जूझते हुए व्यवस्था से संघर्ष किया और इनके लिए सुविधा और न्याय का रास्ता बनाती रहीं। 1996 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1977 में मैगसेसे पुरस्कार देकर भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1986 में पद्मश्री और 2006 में पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया।
Lewis Carroll. He's also a mathematician and was also a photographer. He's known for Alice's Adventures in Wonderland and its sequel, Through the Looking Glass. His writing style included wordplay, logic, and also fantasy. Also, let me name two of his poems, Jabberwocky and The Hunting of the Snark, which are well known for the genre like included in the genre of nonsensical literature, and its humor is derived from its nonsensical nature rather than wit or the joke of a punchline. So this was about nonsensical literature also, which exists.
और आज ही जयंती है एक ऐसी शख्सियत की जिनकी सिर्फ दो मिसरे मैं सुनाऊंगी तो फिर से ये कहूंगी कि हर सुनने वाला जो है वो पहचान जाएगा। जी। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जी हाँ, कैफी आजमी की बात कर रहे हैं हम। कैफी आजमी एक उर्दू के शायर थे और फिल्मों में बहुत बड़े गीतकार भी थे। कैफी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 में उन्होंने जन्म लिया। किशोर होते होते मुशायरे में शामिल होने लगे। 1936 में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और उसके बाद उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया वो ये कि उनका निकाह हुआ शौकत से। दो बच्चे हैं उनके, जिनमें से शबाना आजमी बहुत बड़ी अदाकारा रही हैं और बाबा आजमी के बारे में भी सब जानते हैं। 1974 में भारत सरकार ने कैफी आजमी को पद्मश्री से सम्मानित किया था। उन्हीं के लिखे हुए चंद गीतों की एक मेडली सुनते हैं। Now let's talk about David Grohl. He founded the rock band Foo Fighters, of which he is the lead singer, guitarist and principal songwriter. He has also been the drummer of the grunge band Nirvana. He formed Foo Fighters as a one-man project and he played most of the instruments also and given the vocals for all the songs that he made in his first album. In 2016, Rolling Stone ranked Grohl the 27th best drummer of all time and he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. And now, listeners, we have the song by him, The Pretender, in his voice and also his guitars. जयंती है आज दुर्गा खोटे की। दुर्गा खोटे अपने जमाने की मशहूर हिंदी और मराठी फिल्मों की अभिनेत्री। अनेक हिट फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। शुरुआती फिल्मों में नायिका की भूमिकाएं करने के बाद जब वो चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आई तब से उनके बेमिसाल अभिनय को आज तक लोग याद करते हैं। दुर्गा खोटे ने करीब 200 फिल्मों के साथ ही सैकड़ों नाटकों में भी अभिनय किया और फिल्मों को लेकर सामाजिक वर्जनाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। उनके सभी यादगार किरदारों में से सबसे अहम, सबसे यादगार किरदार अगर मैं कहूं कि फिल्म मुगले आजम की जोधा बाई का था तो गलत नहीं होगा। तो क्यों ना हम मुगले आजम की जोधा बाई को ही सुन लें।
सलीम, महाबली का सामना एक लौंडी के लिए हरगिज नहीं। खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने।
Well, she has received the highest award in Indian cinema, the Dada Saheb Phalke Award, for lifetime contribution to Indian cinema. And, like as you said, he was the foremost leading ladies of her time.
और आज जन्मदिन है सीमा बिस्वास का। सीमा बिस्वास वो भारतीय अभिनेत्री जो हिंदी फिल्मों में और रंगमंच में काम करती हैं और जिनकी सबसे बड़ी पहचान शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन है। उस फिल्म में उन्होंने फूलन देवी की भूमिका निभाई, उसके बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली और बस।
वेल, टुडे इट्स आल्सो नईम, इट्स बर्थडे ऑफ नारायण कार्तिकेयन, द प्रोमिनेंट फिगर इन द वर्ल्ड्स मोटर स्पोर्ट्स सर्किट। Well, he holds the prestige of being the first Indian to compete in the Formula One Championship.
और है तो अभी हमारे पास बहुत कुछ बताने के लिए हमेशा की तरह, लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वक्त कह रहा है कि अपने श्रोताओं से आज के कार्यक्रम आज सवेरे के लिए अनुमति ले ली जाए। तो इजाजत दीजिए मुझे नईम अख्तर और मेरे साथ ही शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।